एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम जेफरी यूजिनिडिस के बहुत ही चर्चित उपन्यास मिडल सेक्स की गहराइयों में उतरने वाले हैं।
हाँ बिल्कुल, एक ऐसा उपन्यास जो आपको पकड़ लेता है शुरू से ही।
सही कहा, यूजिनिडिस मतलब समकालीन अमेरिकी साहित्य का एक बड़ा नाम है। 1960 में डेट्रॉइट में जन्मे और उनकी ग्रीक अमेरिकी जड़ें वो उनके लेखन में साफ छलकती हैं।
जी, और खास तौर पर किरदारों को गढ़ने में और इतिहास को कहानी में पिरोने में वो कमाल के हैं। उनका पहला उपन्यास द वर्जिन सुसाइड्स वो भी काफी मशहूर हुआ था।
हाँ, लेकिन मिडिल सेक्स जो 2002 में आया उसे तो मतलब उनका सबसे बड़ा काम माना जाता है।
9 साल लगे थे लिखने में।
9 साल, और फिर 2003 में पुलित्जर पुरस्कार भी मिला इसे। बिल्कुल, और ये कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। इसमें आपको पारिवारिक गाथा मिलेगी, अप्रवासियों का संघर्ष दिखेगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, और एक व्यक्ति की जिसे बिल्डुंग्स रोमान कहते हैं वो आत्मखोज की यात्रा भी है।
मतलब कई सारी परतें हैं इसमें।
हाँ, तो आज हम इसी उपन्यास की कहानी, किरदारों का सफर, इसके जो मुख्य विषय हैं, लेखन का अंदाज और इसका जो एक स्थायी प्रभाव है उस पर बात करेंगे।
जरूर, और शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी उस यादगार पहली पंक्ति से, शायद ही कोई भूल पाए।
हाँ, कौन सी?
मेरा जन्म 2 बार हुआ। पहली बार जनवरी 1960 में डेट्रॉइट के एक असाधारण रूप से धुंधले दिन में एक बच्ची के रूप में, और फिर दोबारा अगस्त 1974 में पेटोस्की मिशिगन के पास एक आपातकालीन कक्ष में एक किशोर लड़के के रूप में।
वाओ, मतलब पहली लाइन से ही पाठक चौंक जाता है, सोचने लगता है।
बिल्कुल, ये आवाज है कैलियोप केल, स्टीफनी डिस्की, कहानी का नैरेटर, जो एक 41 साल का इंटरसेक्स व्यक्ति है। और कैल सिर्फ अपनी कहानी नहीं सुना रहा।
नहीं, वो तो जैसे पूरे परिवार का 3 पीढ़ियों का इतिहास खंगाल रहा है।
हाँ, दादा दादी डेस्डेमोना और लेफ्टी स्टीफनीडिस से शुरू करके, वो भी कहाँ, 1920 के दशक के ओटोमन साम्राज्य के एक छोटे से ग्रीक गांव से।
और फिर कहानी कहाँ कहाँ नहीं जाती, निषेध काल का डेट्रॉइट, फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद का अमेरिका, 1970-70 के दशक की वो उथल पुथल।
बहुत लंबा सफर है, एक महागाथा की तरह।
हाँ, और इस पूरे सफर के केंद्र में एक राज है, एक जेनेटिक राज।
जी, एक बहुत ही दुर्लभ जेनेटिक बदलाव, 5α-reductase deficiency।
और कमाल की बात यह है कि ये जीन परिवार में आया कैसे, एक वर्जित मतलब भाई बहन के रिश्ते से।
हाँ, और ये पीढ़ियों तक छिपा रहा, किसी को पता नहीं चला, फिर आखिरकार कैल में आकर ये जाहिर होता है।
तो एक तरह से ये एक जेनेटिक जासूसी कहानी भी हुई है ना, हम उस जीन के सफर को फॉलो करते हैं।
बिल्कुल, एक जेनेटिक थ्रिलर कह सकते हैं।
और यही कैल के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन जाता है, खुद को समझना,
अपनी पहचान को स्वीकार करना। हाँ, खासकर ऐसी दुनिया में जो हर चीज को बस दो ही खांचों में देखती है, मर्द या औरत।
बिल्कुल, और यही वो सवाल आता है, हमारी पहचान क्या सिर्फ हमारे जीन्स बनाते हैं या हमारी परवरिश, हमारा माहौल, समाज?
वही पुरानी बहस, नेचर वर्सेस नर्चर, प्रकृति बनाम पोषण।
हाँ, और उपन्यास कोई आसान जवाब नहीं देता, वो दिखाता है कि कैसे ये दोनों चीजें, हाँ, मिलकर ही एक इंसान की कहानी गढ़ती हैं।
सही कहा, तो कहानी की नींव रखी जाती है कैल के दादा दादी डेस्डेमोना और लेफ्टी, और फिर उनके बेटे मिल्टन यानी कैल के पिता से।
तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं, पहली पीढ़ी, वो पुरानी दुनिया और वो राज, साल 1922, ओटोमन तुर्की का बिथिनियोस गांव।
माहौल कैसा रहा होगा, ग्रीको तुर्की युद्ध चल रहा था, अनिश्चितता, डर।
हाँ, और उसी पृष्ठभूमि में स्मरणा शहर जल रहा था, एक भयानक ऐतिहासिक त्रासदी थी वो। ये घटनाएं सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये किरदारों की किस्मत तय कर रही थीं।
और उसी भयानक मंजर के बीच हम मिलते हैं डेस्डेमोना और लेफ्टी से, सगे भाई बहन। उनका परिवार रेशम के कीड़े पालता था।
रेशम का धागा, ये बाद में एक बड़ा प्रतीक बनता है उपन्यास में, है ना, जेनेटिक्स का, रहस्यों का, बदलाव का।
बिल्कुल, तो युद्ध में उनका गांव उजड़ जाता है, वो किसी तरह स्मरना भागते हैं, लेकिन वहां भी आग लग जाती है, उन्हें लगता है सब मारे गए, वो अकेले बच गए हैं।
और तब वो फैसला लेते हैं।
हाँ, बिछड़ने के डर से और शायद एक दूसरे पर बहुत ज्यादा निर्भर होने की वजह से वो अमेरिका जाने वाले जहाज पर पति पत्नी बनने का नाटक करते हैं, अपना असली रिश्ता छुपा लेते हैं।
कितना बड़ा और कितना त्रासद फैसला, ये सिर्फ एक राज नहीं था, ये उनकी और उनकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी की नींव बन गया।
और यहीं से वो दुर्लभ जीन, वो अनचाही विरासत, उनके परिवार में उनकी वंश रेखा में दाखिल हो जाती है।
फिर वो पहुंचते हैं अमेरिका, नई दुनिया, एलिस आइलैंड से होते हुए डिट्रॉइट,
हाँ, जहां उनका कोई रिश्तेदार था, और बसते हैं मिडिलसेक्स स्ट्रीट पर। नाम में ही विडंबना है कि हजारों अप्रवासियों की कहानी थी, एक जैसी मशीनी जिंदगी, लेकिन लेफ्टी में कुछ और करने की चाह थी।
हाँ, वो सिर्फ मजदूर नहीं बना रहना चाहता था, उसने उस नीरसता से निकलकर वो निषेध युग का फायदा उठाया।
अच्छा, कैसे?
उसने एक अवैध सराय मतलब स्पीकीज़ी खोली और कामयाब भी रहा। वो अमरीकी सपने के पीछे भाग रहा था।
और डेस्डेमोना, वो कैसे ढल पाई?
वो मुश्किल था। डेस्डेमोना पुरानी दुनिया की यादों, रिवाजों और उस पाप के बोझ तले दबी रहती थी। उसका मन वहीं अटका था,
जबकि लेफ्टी ज्यादा प्रैक्टिकल था।
हाँ, वो नए देश में ढलना चाहता था, पैसा कमाना चाहता था। फिर उनका बेटा मिल्टन पैदा हुआ। वे एक नई जिंदगी बनाने की कोशिश तो कर रहे थे, पर वो राज, वो हमेशा उनके साथ एक साये की तरह था।
अप्रवासी जीवन का संघर्ष, पर एक गहरे राज के साथ।
अब कहानी आती है दूसरी पीढ़ी पर। कैल के माता पिता मिल्टन और टैसी, ये पीढ़ी अमेरिकी सपने को ही ऐसे साकार करती दिखती है।
हाँ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, अमेरिका में तरक्की का दौर है, मिल्टन एक कामयाब अमेरिकी बिजनेसमैन बन जाता है।
और दिलचस्प बात ये कि वो शादी करता है अपनी दूसरी चचेरी बहन टैसी से। मतलब अनजाने में ही सही, परिवार में वो अंतरविवाह का पैटर्न फिर से दोहराया जाता है।
ओह, तो वो जीन फिर से पास ऑन होने का खतरा बना रहा है।
बिल्कुल। मिल्टन हर्क्यूलीज हॉट डॉग्स नाम की रेस्टोरेंट चेन खोलता है और खूब सफल होता है। परिवार अब मिडिलसेक्स स्ट्रीट से निकलकर ग्रॉस पॉइंट जैसे पॉश इलाके में चला जाता है,
अमेरिकी मध्य वर्ग में पूरी तरह शामिल हो जाने का प्रतीक।
हाँ, और टैसी, कैल की माँ,
टैसी थोड़ी ज्यादा संवेदनशील लगती है। शायद उसे अपनी बेटी कैलियोपे में कुछ अलग सा महसूस होता है, पर वो कह नहीं पाती, समझ नहीं पाती। वो अपने समय की सामाजिक भूमिकाओं में बंधी है, पत्नी, माँ।
उनके दो बच्चे हुए, एक बेटा जिसका नाम मजाक में चैप्टर 11 पड़ गया था।
हाँ, क्योंकि वो तब कंसीव हुआ जब मिल्टन दिवालिया होने वाला था।
और बेटी कैलियोप, हमारी नैरेटर। बाहर से सब परफेक्ट लगता है, अच्छा घर, सफल पति, प्यारे बच्चे, लेकिन अंदर ही अंदर
कुछ अनकहा, अनदेखा चल रहा था। और यहीं से कहानी कैलियोप के बचपन और उस बड़े मोड़ पर आती है।
हाँ, 1960s और 70s का दशक, ग्रॉस पॉइंट। कैलियोप का बचपन ऊपर से तो बिल्कुल सामान्य लगता है, लड़कियों के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है,
मगर अंदर से वो हमेशा खुद को अलग महसूस करती है। उसे अपनी एक क्लासमेट, जिससे वो अस्पष्ट वस्तु कहती है, उसके लिए एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जिससे वो समझ नहीं पाती।
वो लड़कियों वाले तौर तरीकों से जूझती है, उसे लगता है वो कहीं फिट नहीं होती।
हाँ, और इसी बीच 1967 में डिट्रॉइट में दंगे होते हैं, जिसका असर उनके परिवार पर भी पड़ता है, जैसे इतिहास फिर दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो।
कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है 1974 की गर्मियों में। कैलियोप 14 साल की है।
वो अस्पष्ट वस्तु के साथ एक करीबी अनुभव उसे और उलझा देता है, और फिर वो ट्रैक्टर दुर्घटना।
हाँ, उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वहीं डॉक्टरों को पता चलता है उसकी इंटरसेक्स स्थिति के बारे में, वही 5α-reductase deficiency। वो पारिवारिक राज अब सामने आ गया था।
सोचिए उस परिवार पर क्या गुजरी होगी, माता पिता एकदम सदमे में।
वे उसे न्यूयॉर्क ले जाते हैं, एक विशेषज्ञ डॉक्टर पीटर लूस के पास, लेकिन डॉक्टर का रवैया बहुत ठंडा, वैज्ञानिक किस्म का है। कैलियोप और डर जाती है।
उसे बताया जाता है कि सर्जरी करके उसे पूरी तरह लड़की बना दिया जाएगा, और फिर वो रात।
हाँ, जब वो छिपकर अपने माता पिता और डॉक्टर की बातें सुन लेती है, उसे अपनी असलियत पता चलती है।
ये जानना कि उसका शरीर, उसकी पहचान वो नहीं जो उसे बताया गया था, क्या झटका लगा होगा।
और फिर वो जो करती है, वो एक विद्रोह था। बाल काट लेना, भाई के कपड़े पहनना और अस्पताल से भाग जाना।
वो कैल बन जाती है, एक लड़के की पहचान चुन लेती है, यही उसका दूसरा जन्म होता है।
इसके बाद शुरू होती है कैल की अपनी यात्रा, आत्मखोज की अकेली यात्रा।
हाँ, वो भाग कर सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है। सड़कों पर जिंदगी, अजीब अजीब नौकरियां, यहां तक कि पीप शो में काम, वो सब कुछ करता है बस ये समझने के लिए कि वो कौन है और इस दुनिया में कैसे जिए।
70 के दशक का वो माहौल, काउंटर कल्चर, वो एक मर्द के तौर पर जीना सीख रहा है। अकेलापन है, पहचान का संकट है, सेक्सुअलिटी के सवाल हैं।
ये खुद को दोबारा गढ़ने की एक बहुत ही धीमी, मुश्किल प्रक्रिया है, पर जरूरी भी।
काफी सालों बाद कैल की अपने परिवार से दोबारा मुलाकात होती है। पिता मिल्टन की मौत हो चुकी है।
माँ और दादी, उन्होंने धीरे धीरे बिना कुछ कहे शायद दर्द के साथ ही इस सच्चाई को मान लिया है।
उपन्यास के अंत में हम कैल को बर्लिन में पाते हैं। वो एक वयस्क है, अमेरिकी विदेश विभाग में काम कर रहा है।
उसने अपनी पहचान को पूरी तरह अपना लिया है, उसमें एक शांति है और शायद प्यार के लिए भी वो तैयार है। अंत में एक उम्मीद है।
बिल्कुल, ये उपन्यास इतने सारे विषयों को छूता है। पहचान का मुद्दा तो सबसे बड़ा है ही, लिंग, यौनिकता, संस्कृति।
हाँ, और यूजीनीडीसी दिखाते हैं कि पहचान कोई ऐसी चीज नहीं जिसे दो हिस्सों में बांट दिया जाए, ये एक जटिल बहता हुआ स्पेक्ट्रम है।
और वो प्रकृति बनाम पोषण वाला सवाल, कैल का वो कोट कितना अहम है, बायोलॉजी आपको दिमाग देती है, जिंदगी उसे मन में बदल देती है।
बिल्कुल, मतलब जीन्स हमें एक आधार देते हैं, लेकिन हमारे अनुभव, हमारी पसंद, हमारा समाज, वो हमें आकार देते हैं। ये दोनों ताकतें हमेशा काम करती रहती हैं।
सही, और साथ में वो अप्रवासी अनुभव, अमेरिका में खुद को दोबारा बनाने का मौका तो मिलता है, पर अतीत को भूलने का दबाव भी होता है।
डेस्टिमोना और लेफ्टी ने अपना राज छुपाया, पर वो राज उन्हें कभी छोड़ता नहीं।
और नियति बनाम मर्जी का सवाल भी है, क्या कैल की कहानी पहले से लिखी थी उसके जीन्स में, या उसने अपनी मर्जी से अपनी राह चुनी?
उपन्यास शायद यही कहता है कि जीन दिशा दिखा सकते हैं, पर चलना हमें खुद पड़ता है। कैल का भागना और अपनी पहचान चुनना, वो तो मर्जी का ही नतीजा था।
रहस्यों और चुप्पी का असर भी कितना गहरा दिखाया गया है, एक पीढ़ी का राज कैसे अगली पीढ़ी को प्रभावित करता है।
और ये सब इतिहास के बड़े पर्दे पर हो रहा है। ऑटोमन साम्राज्य का पतन, प्रोहिबिशन, वर्ल्ड वॉर टू, डिट्रॉइट दंगे, वॉटरगेट।
हाँ, ये सिर्फ बैकड्रॉप नहीं है, ये घटनाएं किरदारों की जिंदगी में सीधे दखल देती हैं। हम सब इतिहास का हिस्सा हैं।
अगर लेखन शैली की बात करें तो कैल का नजरिया, वो फर्स्ट पर्सन नरेटर जो लगभग सब कुछ जानता है, वो बहुत खास है। उसकी आवाज में ह्यूमर भी है, उदासी भी और सहानुभूति भी।
और कहानी का स्ट्रक्चर सीधा नहीं चलता, आगे पीछे होता रहता है, जैसे डीएनए का हीलिक्स। ये दिखाता है कि अतीत हमेशा वर्तमान में मौजूद रहता है।
और प्रतीक भी कितने गहरे हैं। मिनोटोर, वो आधा इंसान आधा बैल, कैल की मिली जुली पहचान का प्रतीक। रेशम के कीड़े, जेनेटिक्स, राज, बदलाव।
वो भटकता हुआ जीन जिसे लेखक ने लगभग एक किरदार ही बना दिया है।
हाँ, और डेट्रॉइट शहर खुद, जो परिवार के उतार चढ़ाव का आईना है।
भावनात्मक रूप से ये किताब बहुत असर करती है। कैल की कहानी भले ही अनोखी हो, पर उसका अनुभव अलग महसूस करना, अपनी जगह ढूंढना, परिवार की उम्मीदों से जूझना, ये सब बहुत रिलेटेबल है।
हाँ, ये लिंग को लेकर हमारी जो संकीर्ण सोच है उसे चुनौती देती है, इंसान होने का एक ज्यादा बड़ा, ज्यादा हमदर्द नजरिया देती है।
ये इंसानी जटिलता का जश्न मनाती है। कैल की वो इच्छा याद है कि काश उसके पास जटिल संकर भावनाएं जाहिर करने के लिए शब्द होते।
बिल्कुल, ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है, अपने परिवार के राज, अपनी विरासतें, अपने सच के बारे में।
तो अंत में अगर हम एक लाइन में कहें, मिडिलसेक्स हमें क्या सिखाता है?
शायद यही कि हम कौन हैं, ये हमारी बायोलॉजी, हमारा इतिहास और हमारी अपनी पसंद, इन सब के बीच एक लगातार चलने वाली बातचीत का नतीजा है। हाँ बिल्कुल, और ये उपन्यास आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये उस हिम्मत को सलाम करता है जो अपनी अनूठी पहचान को, चाहे वो कितनी भी जटिल क्यों ना हो, अपनाने के लिए चाहिए होती है। ये नॉर्मल की सीमाओं को तोड़ता है।
यह संवाद यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।